पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे के, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे,
ओम शांति। एक तपस्वी हिमालय की वादियों में कहीं पर बैठकर तपस्या करता था और उसकी तपस्या हर दिन और गहरी होती रहती थी और बीच बीच में अब वो समाधि में जाने लगा था और एक लंबी समाधि में जाकर एक बार जागता है और फिर अपने शिष्य से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आओ। शिष्य जाता है पानी लाने। वो जब आता है, आने से पहले देखता है कि गुरुजी तो फिर से ध्यान मग्न हो गए, योगी जी वापस समाधि में चले गए। और ये समाधि जो होती है ये टूटती नहीं सालों साल। दिखाया है कि अनंत साल बीत जाते हैं, अनगिनत वर्ष वो वैसे ही अपना समाधि में लीन रहता है और एक दिन फिर आंख खोलता है और आंख खोलते ही कहता है पानी पानी। पर अब ना वो शिष्य है ना वो गंगा वहां से गुजर रही है। दो शब्दों का प्रयोग शास्त्र में, एक है मनोलय, एक है मनोनाश। दक्षिण में रमन महर्षि थे, उन्होंने इस कहानी को कई बार बताया है। कहा कि ये जो योगी था कितने वर्ष तक समाधि में लीन रहा, पर जब बाहर निकला तो सबसे पहली चीज उसने मांगी कौन सी? पानी। क्यों? क्या उसकी उस समाधि ने उस इच्छा को अभी तक भस्म नहीं किया था? समाधि में, मेडिटेशन में जाने से पहले जो उसकी इच्छा थी, जो चाहिए था, वो इतना लंबा समय उस योग की अवस्था में रहने के बाद भी जब वो बाहर निकला तो पानी पानी कहने लगा। अर्थात मन की गहराई में बहुत कुछ समाया हुआ है। ये जो हुआ था, ये मनोलय हुआ था। मन अल्पकाल के लिए विलीन हो गया था, डूब गया था उसमें, और फिर जब बाहर निकला तो वापस वही की वही इच्छा वैसी की वैसी थी। जो संस्कार इधर थे, जो वासना इधर थी, जो तृष्णा इधर थी, वो उठने के बाद सारी की सारी वैसी ही थी, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। अर्थात वासना, इच्छाएं, संस्कार बहुत गहरे तलों में है। केवल कोई योग में बैठ जाए और लंबा समय योगयुक्त जीवन बिता ले, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके सबसे गहरे संस्कार नष्ट हो गए। इसके लिए शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बाबा ने उस शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया है, मनोनाश। एक है मनोलय, एक है मनोनाश, और बाबा का है मन मना भाव। मनोनाश अर्थात मन की जो सूक्ष्म विकारी वृत्तियां है, वासनाएं है, अज्ञात से भय उसमें बैठे हुए है, जिन भय, जिनका संबंध ज्ञान में आने के पहले के संस्कारों से है। ज्ञान में आते ही सब कुछ भूल गया, नशा चढ़ गया, मुरली, सेवाएं, सेवा केंद्र, ये सब में इतने खो गए, और अच्छा भी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो उधर था वो सारा खत्म हो गया। मेडिटेट टिल द लास्ट वासना इज डिस्ट्रॉयड। तब तक योग युक्त, तब तक योग करो जब तक वो अंतिम वासना नष्ट न हो जाए। एक शिष्य अपने गुरु के पास कई साल रहता है। शिष्य बहुत सारी योग का अभ्यास करता है और बहुत ही प्रामाणिक रीति से करता है, बहुत लगन है उसको, और एक दिन उसे एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। भागा भागा दौड़ता दौड़ता अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि आज मुझे जो अनुभव हुआ, जो आज तक नहीं हुआ, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, मैं डूबा रहा, घंटों बैठा रहा, जैसे कि वो समाधि थी, पहली झलक मुझे मिल गई उस सुख की, उस आत्मा की, उस परमानंद की, कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे आज प्राप्त हुआ। और वो कहता है, ये आपकी असीम अनुकंपा है, इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या दूं? ये सब मुझे आपकी वजह से मिला है, रीपेमेंट। गुरु कहता है, अगर तुम वास्तव में मुझे देना चाहते हो कुछ, तो एक ही चीज दो, वापस उस अज्ञान की अवस्था में नहीं उतर जाना, अब इसी अवस्था में रहो, बस यही चीज मुझे तुमसे चाहिए। जो तुम्हें अभी मिल गया है, जो ऊंची अवस्था का तुमने अभी अनुभव किया है, जो झलक तुमको मिली है आत्मा की, शरीर से अलग होने की, शरीर जैसे है ही नहीं। वो शिष्य कहता है, मैं अचानक उठ गया और चिल्लाने लगा कि मेरा शरीर कहां है, मेरा शरीर कहां है। ऐसी अवस्था आ गई कि जैसे शरीर खो गया, और जब चेतना वापस आई तो चिल्लाने लगा कि शरीर कहां है, हाथ कहां है, मेरे पैर कहां है, मेरी आंख कहां है, कुछ था ही नहीं। और फिर बहुत समय लगा धीरे 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 शरीर में वापस आने के लिए। अब मैं क्या करूं, मिल तो गया, यही तो चाहिए था, इतने सालों से इसीलिए इधर आया था, अब आगे क्या करूं। गुरु कहता है अब आगे एक ही चीज कर कि यह अवस्था खो ना जाए। अध्यात्म में ऊंचा उठना बहुत परिश्रम से कई लोग उठ पाते हैं, परंतु गिरावट होती है कब, जब वापस उसी अज्ञान में गिर जाते हैं, वापस परवश हो जाते हैं, वापस कोई बंधन बांध लेता है, वापस किसी पिंजरे में घुस जाते, दरवाजा बंद करते पिंजरे का और वहां बैठ के क्या चिल्लाते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, और बहुत दुख होता है क्योंकि ये जो पंछी है पहले कैद में था, फिर आकाश में उसने उड़ान भरी थी और दूसरों को उड़ाया था और अनुभव किया था कि कितनी खुशी है उड़ने में इस आकाश में, और अपने आप के ऊपर तरस भी खाया था कि कितना मैं दुखी था जब बंधन में था। अब यही पंछी सारी दुनिया की परिक्रमा और सैर करके वापस आके उसी पिंजरे में फंस गया है और अब दुख उसको ज्यादा है। अब भी पिंजरे में, पहले जैसे पिंजरे में था अब पिंजरे में, पर इस बार के पिंजरे में होने के साथ साथ उसके पास एक अनुभव भी है आकाश का, इसलिए अब उसका दुख कैसा है, ज्यादा है। सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, अंतर में संघर्ष छिपाए तेरा जीवन जलता होगा, हाँसों में छिप क्रंदन तेरा भोले जग को छलता होगा, पर अनजाने में तो तेरी अखियां भी भराती होगी। सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, कैसे तुझे अच्छी लग सकती है जिसने आकाश का मजा चखा है, जिसने आकाश का अनुभव किया है, स्वतंत्रता का जिसने अनुभव किया है, उसको सोने की भी दीवारें मजा नहीं देगी। जग की खुशियां पर न्योछावर होगी कब तक तेरी चाहे, पलकों के डोरों से कब तक नापेगी जीवन की राहें, सोच रहा हूं बुझती कितनी यू ही जीवन बाती होगी, सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे लुहाती होगी, जागृति का संदेश लिए जब लेती होगी वायु ही लो रहे, उषा की आभा से रक्तिम होती होगी नब की कोरे, जग के आंगन में जब चिड़िया मधुर गाती मधुर प्रभाती होगी, सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। तो पंछी दुखी है, उसे वो सुबह का गीत सुबह की प्रभाती बहुत याद आ रही है, आकाश में उड़ना याद आ रहा है, पर अब बंधन में है। तो कर्मातीत अर्थात चार परिभाषा दी है लास्ट संडे की मुरली। पहला कर्मातीत अर्थात कितना दिन हो गया, 6 दिन ही तो हुए बस, साकार मुरली नहीं, अव्यक्त वाणी, रविवार 29 तारीख की अव्यक्त मुरली थी 27/3/85 की। पहला योगयुक्त, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त और एवर रेडी, ये चार परिभाषा है बाबा ने दी है, किसकी, कर्मातीत अवस्था की। तो बाबा ने क्या दिया, क्या देखा और क्या किया, बाबा ने आते ही क्या किया, परिक्रमा की, चक्कर लगाया, किसकी चक्कर लगाया, सारे स्थानों का चक्कर लगाया। यह चक्कर लगाना बहुत अच्छी ड्रिल है, योगी अर्थात पैर में चक्री लगी हो, पैर एक जगह ना टिके, अमृत वेला घूमते फिरे, विश्व की परिक्रमा लगाना है। एक है इस धरती की परिक्रमा लगाना, एक है मधुबन की परिक्रमा लगाना, ये सब आवश्यक कार्य है जो सुबह सुबह करने, जैसे बाबा ने कहा जैसे भक्ति में तुम परिक्रमा करते थे मंदिरों की, अब बाप परिक्रमा करते हैं तुम्हारे अलग अलग स्थानों की। फिर बाबा ने दो चीजें देखी, तो अमृत वेला यह अभ्यास किया जा सकता है कि यह धरती है और मैं आत्मा क्या कर रही हूं, धरती की परिक्रमा लगा रही हूं, एक। दूसरा मधुबन की परिक्रमा, मधुबन की परिक्रमा में चार धाम की यात्रा, हर दिन जैसे नए वर्ष के लिए जो 20 पुरुषार्थ दिए है उसमें चौथा क्या है, चार धाम की यात्रा, तीसरा चार धाम की यात्रा, हर दिन चार धाम की यात्रा करनी है। कैसे यात्रा करनी है, मन से, वहां जाके करना वो अलग, वो कुछ कुछ कर सकते हैं जो यहां रहते हैं, पर यहां रहते हुए भी दूर बैठकर चार धाम की यात्रा करनी है, आंगन में बैठकर चार धाम की यात्रा करनी, अपने कमरे में बैठकर देखना बाबा की पहाड़ी पर, नक्की पर, या किसी सेवा केंद्र, या कहीं देश विदेश में, बाबा ने कहा इस मुरली में ना, चाहे सामने कोई भी हो, बाप सब बच्चों को, सभी ब्राह्मण बच्चों को देखते हैं, चाहे देश या विदेश, तो वहां से देखना। शांति स्तंभ पर गए शक्तिशाली बने, हिस्ट्री हॉल में गया व्यर्थ समाप्त हुआ, कुटिया में गए उदासी मुक्त हुए, कमरे में गए बाप समान बने, जो चार महावाक्य है बाबा के, उसका व्यवहारिक अनुभव वैसा हो रहा है। शांति स्तंभ पर शक्तियां भर रही है, हिस्ट्री हॉल में व्यर्थ नष्ट हो रहा है, कमरे में बाप समान अवस्था का अनुभव हो रहा है, समान संपन्न संपूर्ण फॉलो फादर, और कुटिया में रूह रिहान हो रही है, उदासी मन की जो मूड डाउन हो गया है वो फिर से ठीक हो रहा है। तो मधुबन की परिक्रमा, उसके बाद में जितने बाबा के सेवा केंद्र है उन सब की परिक्रमा करना है सुबह सुबह एक साथ, असंख्य फरिश्ता रूप धारण कर लेना और एक एक को एक एक सेवा केंद्र पर भेज देना। हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनेक रूप धारण कर सकते हैं ना फरिश्ते में, तो कितने भी मल्टीप्लीकेशन कॉपी, उसमें कितने भी कॉपीज बनाई जा सकती है अपनी खुद की, अलग अलग वर्शन, एक एक को एक एक जगह भेज देना। वहीं रख दो उनको एक एक, फिर भी हम तो रहेंगे यार। राम जी जब वापस अयोध्या आते हैं, हर अयोध्या निवासी सोचता है राम से मुझे सबसे पहले मिलना है, मैं सबसे पहले मिलूंगा, और दिखाया है प्रभु दरी विविध शरीरा, अलग अलग शरीर प्रकट करते हैं राम, एक एक राम एक एक अयोध्या निवासी से मिलता है, तो सबको संतुष्टता होती है कि मेरे से पहले मिले हैं। तो हम भी असंख्य रूप धारण कर ले और एक एक को भेज दो एक एक सेवा केंद्र के ऊपर, तो एक सेवा केंद्र की परिक्रमा। उसके बाद और भी कोई परिक्रमा है, स्वयं की परिक्रमा और सूक्ष्म वतन की परिक्रमा, परम धाम की परिक्रमा, सतयुग की परिक्रमा, मंदिर, किसके मंदिर की परिक्रमा? तो परिक्रमा करना ये योग अभ्यास हो, इसको रोज के योग अभ्यास में शामिल करना है कि मैं फरिश्ता परिक्रमा कर रही हूं। अपने लौकिक घर की परिक्रमा ये महत्वपूर्ण है, फिर ऑफिस की परिक्रमा, फिर जो डिपार्टमेंट है उसकी परिक्रमा, अपने जो साथी है उनकी भी परिक्रमा कर लेना। भक्त हमारी परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा, तो बाबा ने भी परिक्रमा की और दो बातें देखी, क्या देखी, स्थान देखे और स्थिति देखी। स्थान में चार प्रकार के स्थान देखे, कौन कौन से? एक तो वो थे जिन्होंने बिल्कुल फाइव स्टार होटल बना के रखा है, इतनी साधन, इतने साधन, इतने आकर्षण करने वाली चीजें है, ये कहां से लाया, ये टेबल जापान से लाया, वो कहां से लाया, वो चाइना से लाया, वो झूमर कहां से लाया, वो तो अमेरिका से आया है, और बाकी वो बहन अभी गई है एक जगह लेके आई आते समय। स्थूल साधनों का आकर्षण है कुछ कुछ सेवा केंद्रों पर, दूसरे सेवा केंद्र है वहां तपस्या का वायुमंडल है, वहां हर आत्मा योगी है, हर आत्मा तपस्वी है, आश्रम का वायुमंडल है वहां पर, जैसे शास्त्रों में दिखा है आश्रमों में अगर कोई हिंसक प्राणी भी चला जाता है तो अहिंसक बन जाता है, शांत हो जाता है। वो विश्वामित्र जब राजा था उसको किस बात ने आकर्षित किया, इसी बात ने आकर्षित किया था, जब वशिष्ठ के आश्रम में रुका युद्ध लड़ाई करके आ रहा है, सोचता है थोड़ा सा रुकते हैं ऋषि आश्रम में, देखता है वहां शेर बकरी सब अहिंसक आराम से सब, वो आश्रम का वायुमंडल इतना शक्तिशाली है, प्रभावित हो जाता है। और फिर वो गाय दिखती है नंदिनी, जिसने सबको इतना भोजन करा दिया, और बस फिर कहता है मुझे गाय चाहिए, सेना भेजता है, वो गाय से शस्त्र सारे सैनिक निकलते परास्त कर देते। फिर जाता है वशिष्ठ के पास, मैं क्या करूं ऐसा कि जो इस गाय को मैं पाऊं। वो कहता है तुमको ऋषि बनना पड़ेगा, और फिर अहंकार उसका हो जाता है मैं बन के रहूंगा। बहुत तपस्या करता है, राज ऋषि बनता है, आता है अपनी और फिर कहता है अब मैं आ चुका हूं, पर अहंकार अभी भी बहुत है। फिर से हार होती है, फिर से जाता है, फिर से आता है, लास्ट में वो कहता है मैं ब्रह्म ऋषि बन के रहूंगा। वशिष्ठ कहता है ब्रह्म ऋषि अर्थात ही मैं नहीं, जब तक ये तुम्हारा अहंकार है तुम ऋषि नहीं बन सकते। और लास्ट में तो फिर उसको चाहिए नहीं कुछ, जब वो एक्चुअल वास्तव में बन जाता है। तो ऋषि आश्रम कैसा हो, जहां तपस्या का वायुमंडल हो, जहां सुबह का योग और शाम का योग नियमित हो, दिन भर भी योग युक्त तो वातावरण हो। तीसरा क्या देखा, त्याग और श्रेष्ठ भाग्य, सादगी है वहां पर, श्रेष्ठता है, त्यागी है हर आत्मा वहां पर। और चौथा साधारण रूप, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, साधारण है, न त्याग है न तपस्या है, न स्थूल में भी कुछ खास नहीं है, जैसे साधारण घर है, साधारण जीवन जी रहे। तो बाबा ने ये चार प्रकार के स्थान देखे, और फिर स्थिति में क्या देखा, स्थिति में देखा कहां तक बंधन मुक्त है, कहां तक योग युक्त है, कहां तक जीवन मुक्त है, और कहां तक एवर रेडी है। ये चार बातें उसमें देखी, और फिर दो प्रकार के बंधनों की चर्चा की है। कौन से दो बंधन, एक है स्थूल बंधन, एक है सूक्ष्म बंधन। स्थूल तो रस्सियां दिखाई देती है, दृश्य है, ये अदृश्य बंधन है जो बहुत सूक्ष्म बंधन है। तो ये दो बंधन देखे, फिर दो प्रकार के सहारे देखे। कौन से दो सहारे, पहला है साथी और दूसरा है साधन, और इसका ही विस्तार किया है मुरली में, बहुत गहरी मुरली है और बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा ने कहा कि क्या कर देते हैं साथियों के साथ, क्या उत्पन्न हो जाता है, लगाव, झुकाव, अटैचमेंट। किन सेवा साथियों के साथ अटैचमेंट उत्पन्न होती है, जो सहयोग देने वाले हैं, जो वृद्धि करने के निमित्त है, जो क्या आगे बढ़ाने के निमित्त है, और जो मदद करते हैं, जो जिनको निमित्त बनाया वो है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनमें विशेषताएं हैं, जिनमें गुण है, ऐसी आत्माओं से प्रभावित हो जाते हैं। और जो उन्होंने सेवा में बहुत विस्तार किया है उनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ संस्कार मिलन की रास होती है, अच्छा लगता है उसके साथ काम करना, उसके साथ काम करते तो सेवा बहुत तेजी से होती है, अच्छे से होता है सब कुछ। तो ये व्यक्ति का मोह, ये झुकाव, ये संकल्प मात्र भी झुका हुआ तो बाबा ने कहा ये बंधन मुक्त अवस्था नहीं है, ये भी बहुत सूक्ष्म बंधन है। क्या नुकसान है इस बंधन से, उड़ नहीं सकते, उसकी याद आएगी 2 से 4 मिनट तो उसकी याद है, तो उस समय बाप याद नहीं है, फिर योग की जो लिंक है वो टूट जाती है। कितनी सूक्ष्म बातें बताई है यहां पर, जरा भी संकल्प में भी किसी के लिए आकर्षण नहीं, झुकाव नहीं, आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, वो अच्छा लगने लगता है, और फिर क्या कहते हैं यही के शब्द क्या कर देता है, गड़बड़, यही शब्द क्या है, दाल में कुछ तो काला, यही शब्द ही क्या लाता है, हीनता, हीनता लाता है, दाल में काला है, गड़बड़ कर देता है। तो क्या सोचे, सभी अच्छे हैं, सब में विशेषता है। हाँ, बाबा ने कहा रूहानी प्यार सबसे होना चाहिए, पर ये ही, और नाम ऊपर से क्या देते हैं, ज्ञान योग सेवा, लेबल चिपकाया ऊपर से, ज्ञान योग सेवा के लिए जरूरी है, पर अंदर से मोह है, अंदर से झुकाव है, अंदर से लगाव है, अंदर से लागत है, अंदर से वो अच्छा लगता है, अंदर से उसकी महिमा हो रही है, स्वयं के मन में महिमा हो रही है और दूसरों के सामने महिमा हो रही है। बाबा ने कहा अंत में ये बंधन मुक्त बनने नहीं देगा। ऐसी अवस्था में कितना भी योग करो, योग खत्म होने के बाद मुख से क्या निकलेगा? पानी। पानी क्या निकलेगा? पानी कहां है? ना तो नदी रही, ना तो वो शिष्य रहा, दोनों गए एडवांस पार्टी में, पर वो पानी की कामना रह गई है, क्योंकि उसी अवस्था में योग तो किया, सेवाएं भी बहुत की, पर ये शायद एकमात्र मुरली है अव्यक्त मुरलियों में जिसमें बाबा ने एक नए शब्द का प्रयोग किया है जो किसी भी मुरलियों में नहीं है। कौन सा? अंग्रेजी शब्द है, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। हमेशा माइंड तो कहते हैं पर सबकॉन्शियस ये साइंस का शब्द है, ये साइकोलॉजी का शब्द है। बाबा ने कहा बाप साथ है, निर्मल शांता दादी से मुलाकात, बचपन से साथ है, ये कहां चला गया है तुम्हारे सबकॉन्शियस? स्वप्न में भी बाप साथ है, अर्थात सबकॉन्शियस में भी वो साथ है। अब सबकॉन्शियस की बातें बाबा कर रहे हैं। सबकॉन्शियस बहुत बड़ा है। अगर ये पर्वत है तो इसके नीचे जो हिमखंड है ये एक भाग है, ये नौ भाग है। ये हमारे मन के दो हिस्से है, बाह्य मन अंतर मन। ये बाह्य मन वो है जहां हम सेवा कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, दे रहे हैं, अपना सिक्का जमा रहे दूसरों की तरफ, देखो मैं कैसी सेवा करता हूं, देखो मैंने क्या क्या कर रखा है, ये यहां है सब। पर अंदर जो छिपा है वो इधर है, एक नौवा भाग जो है वो अंतर मन में है। यहां पे हमारी बहुत अचेतन की आदतें हैं, इसमें भी पड़ते हैं। बाबा दादी से कह रहे हैं कि बाप साथ है ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में है, बाप साथ है ये स्वप्न में है। स्वप्न यहां से निकलते हैं, इसलिए तो ऐसे डरावने डरावने सपने दिखते हैं। यहां तो कोई डर है ही नहीं, यहां तो बिल्कुल आराम से हमेशा जाते हैं, ट्रेन पकड़ने तो आधा घंटा पहले जाके पहुंच जाते हैं, पर स्वप्न में दिखता है मैं भाग रहा हूं और ट्रेन छूट रही है, हमेशा ऐसा दिखता है। और व्यक्ति हमेशा समय पे जाता है, पर ये कहां से दिखता है वो समझ नहीं आता है कि हर बार जाता हूं तो भाग ही रहा हूं, पैर रखा और ट्रेन चालू, या कभी जा रही है। तो ऐसा होता है क्योंकि सबकॉन्शियस में समा गया है, वो भय बैठ जाता है। हमको याद है एक बार दिल्ली से इधर आना था, राजधानी से, तो सेंटर से वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो गया और एकदम भाग के पहुंचे, एकदम भागते भागते वो भाई और हम, और एकदम स्टेशन पे आ गए जहां से राजधानी छूटती है, वो आरटीटी थे। हमने कहा राजधानी? तो कहता है वो देखो जा रही है क्या करे अब नहीं नहीं ये तो वास्तविक था सामान पूरा 15 प्लेटफॉर्म भाग के गए इधर से वो साइड, और वहां पहुंचने के बाद उनसे पूछते ट्रेन? तो होते वो जा रही है, सामने देखो जा रही है क्या कर सकते तो गई तो वो अचेतन में कुछ ना कुछ समझ आता है। तो ये जो अचेतन का राज्य है, अवचेतन का, अर्धचेतन मन का, सबकॉन्शियस माइंड का, दो प्रकार के मन है, बाह्य मन अंतर मन, आउटर माइंड इनर माइंड, ऑब्जेक्टिव माइंड सब्जेक्टिव माइंड, मेल माइंड फीमेल माइंड, इसको फीमेल माइंड कहा जाता है, ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, ढेर सारे नाम है इसको और इस पर बहुत काम हो रहा है आजकल। तो बाबा ने कहा सबकॉन्शियस में तुम्हारे समाया हुआ है, बाबा साथ है, दादी से मुलाकात। तो सबकॉन्शियस में इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, अच्छा लगता है, वो ही चाहिए, वो जब नहीं रहता है तो बेचैनी। इसलिए हमारे योग का लक्ष्य है, समान का लक्ष्य है, समान इस अवचेतन तक पहुंचाने हैं। और अवचेतन तक पहुंचाने की विधि है चेतन को शांत कर दो, तभी पहुंचता है। एक्साइटेड स्टेज में ज्ञान योग कर रहे हैं वो यहां कुछ भी नहीं जा रहा है, वो ऊपर ऊपर रह रहा है, बस यही घूम रहा है गोल 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 गोल। तो सबसे पहली बात बताई, किसी भी देहधारी को सहारा नहीं बनाना, सहारा एक बाप है बस। चाहे कोई कितना भी अच्छा रहने दो, कितने भी गुण है, कितने भी उसमें अच्छे संस्कार है, कितना भी अच्छा बोलता है, कितना भी अच्छा कुछ सुनाता है, कुछ भी करता है, सहयोग बहुत अच्छा देता है, स्वभाव बहुत अच्छा है, संस्कारों की रास उसके साथ बहुत अच्छी होती है, पर सहारा कोई भी देहधारी ना हो। एक दूसरा सहारा बताया, साधन। साधन सेवार्थ है, साधन निमित्त है, साधन विनाशी है। और साधन के आधार पर जो स्थिति है वो स्थिति भी कैसी रहेगी? विनाशी। ऊपर नीचे, साधन ऊपर नीचे होगा तो स्थिति भी ऊपर नीचे होगी। और वर्तमान समय सबसे बड़ा साधन हमारे हाथ में कौन सा है? इस मोबाइल की भी परिक्रमा लगानी है सुबह सुबह। नहीं, मोबाइल लेके नहीं, मोबाइल की। अच्छा, मोबाइल लेके मोबाइल की, अच्छा। ऐसा वो एक माता होती है, उसको इंटरनेट का एडिक्शन हो जाता है, बिल्कुल इंटरनेट इंटरनेट के सिवा उसको 24 घंटे एक मिनट भी अगर नहीं रहा तो बेचैन होती है। घर वाले सोचते हैं अब इसका कुछ करना चाहिए, इसको पुनर्वसन केंद्र में भेजेंगे, अब इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर। तो वो कहती है मैं वहां जाऊंगी, पर एक शर्त है मेरी। वो कहती है जो भी शर्त है हम सब मानने को तैयार है। वो कहती है वहां वाईफाई होना चाहिए बस, तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली। इसकी भी थोड़ी परिक्रमा करते ना, एक 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 जो है इसमें उसको भी थोड़ा प्यूरिफाई कर देना, पवित्रता की किरणें भेजना, मैसेजेस, वो कॉल, वो जो भी एप्स है, इसकी भी प्यूरिटी चाहिए ना। बेचारे अपवित्र हो रहे हैं बैठे बैठे, जंक लग रही है उनको भी, तो इसकी भी क्या करना है, सुबह सुबह परिक्रमा करके इसको थोड़ा प्यूरिटी की किरणें भेज देना। तो दूसरा है साधन। तो बाबा ने कहा साधन निमित्त मात्र है, साधन तुम्हारा आधार नहीं है, साधना का आधार साधन का बिना हो, क्योंकि साधन विनाशी है और आधार एक अविनाशी पाप है। तो यहां पे ये दो बातें देखी, उसके बाद में आगे परखने की शक्ति। क्या बताया आगे? परखने की शक्ति। अपनी कमजोरी को नहीं परख सकते, इसका कारण एकाग्रता की कमी। एकाग्रता की कमी का कारण बुद्धि की बाप से लगन की कमी है। तो लगन की कमी, एकाग्रता की कमी, कमजोरी को क्या करते हैं फिर? परख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि अपनी कमजोरी को परखने के लिए क्या चाहिए? बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, महीन बुद्धि चाहिए, महीन एकाग्रता चाहिए। और फिर अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, और दो आधार से छिपाते हैं। कौन से दो चीजों से छिपाते हैं? सिद्ध करते और जिद करते, उससे वो बात क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। व्यक्ति चलते चलते नए बंधन निर्माण कर देता है, उसे ही पता नहीं चलता ये बंधन कब निर्माण हुआ, इतना सूक्ष्म मन काम करता है। व्यक्तियों को ढूंढते रहता है, किसको आधार बनाऊं, किससे कुछ राबता, किससे संबंध जोड़ू, इसको अपना आधार बना लूं, इससे कुछ पूछूं, इससे कुछ करूं। लक्ष्य जो होता है वो प्रश्न का उत्तर कम होता है, दोस्ती करना ज्यादा होता है, दोस्ती हो जाए बस, प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर तो पहले ही पता है, अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बनाए, अभी इसका उत्तर किसको नहीं पता, सबको पता है। तो आकर्षण व्यक्तियों की तरफ होता है, क्योंकि यही मनुष्य ने जन्म जन्म किया है, उसे देहधारी चाहिए एक, उसको पकड़ लेता है। सिद्धांत का आकर्षण कम है, व्यक्तियों का आकर्षण ज्यादा है। इसलिए कोई भी देहधारी आधार ना हो, तो बाबा ने यह कहा परखने की शक्ति। परख लेना। और यहां दो उदाहरण दिए, सीता और रॉयल धागा। वो जो होता है वो क्या हो जाता है, लगाव जो होता है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, पक्का बन जाता है, फिर टूटता नहीं। तो ये भी एक रॉयल धागा है। और सीता का उदाहरण दिया, सोना अर्थात खोना, राम को खोया और अशोक वाटिका को खोया। उसको नहीं समझ पाया कि ये जो मृग है ये माया है, इसलिए वो फंस गई उसमें। हमें भी यहां समझ में नहीं आता है कि यही माया है। जीवन में कुसंग की क्या परिभाषा है, किसको कुसंग कहेंगे, जो बाबा से दूर नहीं, किन कौन से व्यक्ति है जिनका संग कहेंगे ये कुसंग है। वैसे सभी महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, परंतु जिनको ज्ञान योग में रुचि कम है उनका संग अर्थात कुसंग एक रीति से, क्योंकि वो हमको नीचे खींचेंगे। जिनको मुरली चिंतन का कोई ख्याल नहीं है ज्यादा, या अमृत वेला जिसके पास हम गए और उससे कहा कि आज मेरा अमृत वेला थोड़ा मिस हो गया, बहुत दुख हो रहा है, वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरा तो दो तीन बार महीने में दो तीन तो हो ही जाते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहने का, आज करो अच्छा पुरुषार्थ करो और क्या, बस अभी जाग गए, बस सोचो अब सवेर है। और ये होते रहेगा, ये ब्राह्मण जीवन में जो है ना ऐसे चलते रहता है, अब बाकी एकदम एक रस हो जाएंगे बाद में, पर ये तो होते रहेगा। ये कुसंग है, ये भी कुसंग है। वो साउथ में तमिल कवि, क्या नाम था उसका, नक्कीयार, उसका दूसरे भी नाम है, दो तीन नाम है, एक नाम है नक्कीरार, सॉरी नक्कीरार, नच्चीयार भी कहते हैं, नक्कीरार भी कहते हैं, नक्कीरार, कोई यार कोई चार, चार पांच नाम है उसके। उसने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, वो मुरुगल, क्या नाम है उसका, वो किताब का लंबा सा नाम है, इतना बड़ा, वो तमिल भाषा में। उसके जीवन में उल्लेख है कि वो योग कर रहा है, एकाग्रता से बैठा हुआ है, जाप कर रहा है कुछ, और अचानक नदी के किनारे बैठा है, अचानक देखता है एक पत्ता ऊपर से गिरा, एकदम ध्यान उधर गया, पत्ते को देखा, आधा पत्ता पानी में आधा पानी के बाहर है, और आश्चर्य से देखता है ये क्या हो रहा है, पत्ता जो पानी में है वो मछली बन गया और पत्ता जो पानी के बाहर है वो पक्षी बन गया। वो देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, और उसका जो एकाग्रता थी योग की वो भंग हो गई, वो उसमें बुद्धि चली गई उसकी, और अचानक वो दिखाया है कोई आत्मा उसमें प्रवेश करती है, कितना सत्य है मुझे पता नहीं, और वो एक जो बंधक होते हैं बंदी उनके बीच में पहुंच जाता है। वो सारे वो लोग होते हैं जो योग भ्रष्ट हुए हैं, क्योंकि ये भी योग भ्रष्ट हो गया केवल वो देखने से। देखा ही क्यों, तुम कर क्या रहे थे, तपस्या कर रहे थे ना, तो तपस्या करो, तो दिखाया है। ये भी कहानी रमन महर्षि ने सुनाई है कि उसने वो देखा और वो योग भ्रष्ट हो गया, क्योंकि बुद्धि एकाग्रता भंग हो गई और सीधा उधर पहुंच गया। और फिर यह भी दिखाया है वो 999 बंधक थे वहां पर, बंदी जो योग भ्रष्ट किसी ना किसी कारण से हुए थे, उन सबको छुड़ाने का वो निमित्त बना, और उसने वो बड़ी सी किताब लिखी है वो मुरुगल पर। तो एकाग्रता, बाबा ने कहा कि अगर बाप से लगन है तो एकाग्रता है, एकाग्रता है तो परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति है तो अपनी कमी को परख सकते हो, और अपनी कमी को परख सकते हो तो कोई बंधन नहीं रहेगा और बंधन मुक्त हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये बंधन उत्पन्न हुआ है ये परख ही नहीं सकते, जान नहीं सकते ना परख सकते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बंधन है। और फिर उसके बाद में बाबा ने उदाहरण दिया किसका, ब्रह्मा का। फलानी याद आई, प्यार सबसे था पर किसी की भी याद नहीं आई अंत में। और यहां और एक उदाहरण दिया, किनारा छोड़ना और किनारा करना, ये दो शब्द है। एक है किनारा, जैसे कौन सा पकवान, हलवा, क्या करता है किनारे छोड़ देता है, वैसे किनारा छोड़ना अर्थात किनारे होना, डिटैच हो गए हर से, हर एक से अलग हो गए, तो जैसे उसने किया वैसे तुम भी करो, जैसे वो बंधन मुक्त बना, जैसे वो एवर रेडी रहा, जैसे उसको कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, इतनी न्यारी अवस्था अंदर से, सबके साथ है पर जैसे है नहीं। कर्म से न्यारा नहीं हो जाना है, बाबा ने कहा कर्म के बंधन से न्यारा होना अर्थात कर्मातीत। तो कर्मातीत की चार परिभाषा है, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सहारा भी नहीं, बंधन सहारा जो भी कहो, कोई धागा कोई सोना आकर्षित ना करे। दूसरा योगयुक्त, तीसरा जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए मुक्त, मुक्त अवस्था है, यहीं पर मुक्ति का अनुभव हो रहा है कि मैं मुक्त हूं। अगला एवर रेडी, रेडी थे निकल गए। फिर उसके बाद में आगे प्यार की पालना, विदेशियों से मुलाकात चल रही है, बाबा ने कहा ब्रह्मा ने क्या किया, प्यार की पालना दी और सूक्ष्म पालना दी, और क्या कहा, फर्स्ट और फास्ट पुरुषार्थ, फर्स्ट पुरुषार्थ और फास्ट पुरुषार्थ। उसके बाद में और क्या कहा, वो अभी जो शांतिवन में मुरली चली वो है, ये हमारी संडे की मुरली चालू है अभी शांतिवन में जो मुरली चली डबल विदेशियों से मुलाकात, उसमें बाबा ने कहा विदेशियों को हाथ में हाथ डालकर चलना अच्छा लगता है, बाप दादा तुम्हारा फ्रेंड्स है, फ्रेंड है तो फ्रेंड बनाओ उसको और हाथ में चलो। अभी हम ये इधर थोड़ा 85 में है, वो 2008 में थे, थोड़ा पीछे है अभी। तो यहां पर कहा कि दादी को भी कहा कि तुम कैसे सिंध जैसे, ये लोग विदेश में क्यों चले गए, वहां के बच्चों को कौन संदेश देगा, जैसे तुम इधर सिंध में चले गए वैसे वो भी चले गए। तो यहां पर प्यार की पालना की बात की, प्यार की पालना ये अच्छा टॉपिक है, सबको प्यार की पालना कैसे दे, सूक्ष्म पालना, प्यार की पालना, पुरुषार्थ तीव्र। तो ब्रह्मा का उदाहरण, और क्या था मुरली में, और भी कोई बात थी, वरदान नहीं, मुरली 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 मुख्य मुरली हाँ, बाबा ने कहा योग्य जो है उसको ही बाबा क्या करते हैं, इशारा देते हैं योगी बनने का, जो योग्य है उनको अपने आप इशारा मिल जाएगा कि अभी हमको योगी बनना है, ये लास्ट लाइन है वहां की। तो कर्म के बंधन से न्यारा रहना, कोई भी व्यक्ति आधार ना हो, कोई भी साधन आधार ना हो, कोई भी वस्तु आधार ना हो, कोई भी वैभव आधार ना हो, सहारा किसी को भी नहीं, और छिपाना नहीं है, छिपाने के दो कारण बताए, सिद्ध और सिद्ध करते हैं उससे बात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कोई भी बात को छिपाओ नहीं, ना ही जिद करो ना सिद्ध करो, सत्य स्वयं सिद्ध है, उसे ज्यादा उसके साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। असत्य के बादल सत्य के सूरज को ढक नहीं सकते, जो सत्य है उसकी अंतिम विजय सत्य की ही होगी। तो ये मुरली थी कर्मातीत अवस्था की। तो कर्मातीत अवस्था की बहुत सारी परिभाषा है, उसमें से चार परिभाषा ये बताई। साकार मुरलियों में कुछ परिभाषा आती है, कर्मातीत अर्थात मुर्दा, कर्मातीत अर्थात कर्म और कर्म का परिणाम टच ना करे, कर्मातीत अर्थात वो तो आ गया इसमें, कर्मातीत प्रभाव से मुक्त, कर्मातीत अर्थात आत्मा जब शरीर छोड़कर चली जाए परमधाम, परमधाम दोनों शरीर छोड़कर, इस डेफिनेशन से ब्रह्मा भी अभी कर्मातीत नहीं बना है, क्योंकि ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर अभी है, क्योंकि एक परिभाषा है कर्मातीत की, सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर से आत्मा जब मुक्त होकर परमधाम पहुंच जाए, परमधाम की जो अवस्था है वो कर्मातीत अवस्था है, अतीत अर्थात परे, कर्म से परे, कर्म के प्रभाव से परे, यहां की वस्तुओं से परे, तत्वों से परे, हर चीज से परे, ये अनुभूति वाली है, वो तो संपर्क है, ये संबंध है यहां पर, इसके लिए उसमें कोई अनुभूति नहीं है, पर एक परिभाषा वो भी है, वो भी है, जैसे यहां बताया ना मुर्दा, मुर्दा भव, कर्मातीत अर्थात मुर्दा, कर्मातीत अर्थात डेड साइलेंस, कर्मातीत अर्थात मर जाओ, कर्मातीत अर्थात जैसे इस दुनिया में तुम हो ही नहीं, ये भी परिभाषा है अलग अलग कर्मातीत की। परमातीत, कर्मातीत अर्थात टोटल साइलेंस, कोई शब्द नहीं, मौन। तो मुख्य जो चीज इस पूरी मुरली में कही है वो है अपने आप को बाबा के प्यार में मगन करना, उससे एकाग्रता आएगी, उससे परखने की शक्ति आएगी और परखने की शक्ति से हम अपनी कमियों को परख सकेंगे और फिर कर्मों की अपनी कमियों को परख के जो सूक्ष्म बंधन है, धागे है, रॉयल थ्रेड्स, उससे स्वयं को मुक्त कर सकेंगे ताकि अंत में कोई भी याद ना आए, ना दूसरे हमको याद करें, ना हम किसी और को याद करें। मैं किसी को याद ना करूं और दूसरा शिव बाबा से ज्यादा मुझे याद ना करे, ये दोनों काम करने हैं कि दूसरा मेरे पीछे ना पड़ जाए याद करते करते और बाबा कोई भूल जाए। कोई अगर हमारे पीछे पड़ जाता है और उसके सामने हम जाके खड़े हो जाते हैं तो भूत भूत में प्रवेश करेगा। उस दिन कहा ना, वो तो बाबा ने क्रोध के लिए कहा, परंतु वो काम और कामना के लिए भी उतना ही सही है। हम में कुछ भी नहीं है पर सामने वाले में विकार है और उसके सामने जाके हम खड़े हो जाए तो उसका वो भूत, उसके वो विचार, उसकी वो कल्पनाएं, उसकी इच्छाएं हम में प्रवेश करेगी। ठीक है, ओम शांति।